नमस्कार भारत, 23 मार्च दिन शनिवार, मैं हूं वात्सल्य राय। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल के सवाल पर विशेष वकील मुलर की जांच पूरी, अब अटॉर्नी जनरल पर निगाहें।
At this point, he will read the report and then make his own determination as to whether any of it will go to Congress. And then
कर्नाटक बीजेपी नेता येदियुरप्पा की कथित डायरी पर सियासत गर्म, आमने सामने कांग्रेस बीजेपी।
1800 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पहुंचाया गया। कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट इट्स बैलेंस, झूठे आरोप लगाना।
और विवेचना में रेहान फजल से सुनिए सारा गढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई की कहानी।
7 घंटे लगातार 21 आदमियों ने 12,000 10,000 आदमियों का मुकाबला किया। ये स्टोरी यूएनओ की 8 सबसे दुनिया की बहादुर स्टोरीज में ली गई।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के चुनावी अभियान में रूस की कथित दखलंदाजी की जांच कर रहे विशेष वकील एफबीआई के पूर्व प्रमुख रॉबर्ट मुलर ने अपनी रिपोर्ट अमेरिकी न्याय विभाग को सौंप दी है। इस रिपोर्ट का कितना हिस्सा अमेरिकी संसद के साथ साझा किया जाना है, इसका फैसला अटॉर्नी जनरल विलियम बर लेंगे। वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसद और स्पीकर नैन्सी पेलोसी और चक शूमर ने मांग की है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और व्हाइट हाउस को इससे दूर रखा जाना चाहिए। भारत सरकार ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक के नेतृत्व वाले संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने बताया कि संगठन को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया गया है। यासीन मलिक फिलहाल जम्मू की कोट बलवल जेल में बंद हैं। वह जम्मू कश्मीर में दूसरा संगठन है जिसे इस महीने प्रतिबंधित किया गया है। इससे पहले केंद्र ने जमात ए इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 36 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने ओडिशा में पुरी से पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। सूची में 23 उम्मीदवार आंध्र प्रदेश से हैं, जहाँ पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। इसके अलावा सूची में महाराष्ट्र से 6, ओडिशा से 5, असम और मेघालय से 1-1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। कांग्रेस ने भी 7वीं सूची में 35 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर अब मुरादाबाद की बजाय फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बिजनौर से टिकट दिया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीका ने कहा है कि उसकी अगुवाई वाली सेना ने सीरिया में कथित इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से उनका आखिरी इलाका भी छीन लिया है। फ्लोरिडा में राष्ट्रपति ट्रंप ने संवाददाताओं को इराक और सीरिया के नक्शे दिखाते हुए कहा कि कभी इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के कब्जे में रहा बड़ा इलाका अब लगभग मुक्त है। उन्होंने कहा, देखिए चुनाव के दिन ISIS कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया है। आप सभी के पास नक्शा मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ISIS किस हाल में पहुंच गया है। मुबारकबाद, जाइए और इसका चारों तरफ प्रचार कीजिए। ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के सदस्यों ने कहा है कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में मस्जिदों पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद इस्तांबुल में हुई बैठक में संगठन के सदस्यों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों को मुस्लिमों के खिलाफ नफरत के मामले देखने के लिए निगरानी केंद्र बनाने चाहिए। उधर न्यूयॉर्क में एक मस्जिद में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र धार्मिक स्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करेगा। उन्होंने कहा,
Mosques and all places of prayer and contemplation should be safe havens.
मस्जिद और सभी प्रार्थना स्थलों को सुरक्षित होना चाहिए, न कि आतंक स्थल। इन जगहों पर प्रार्थना करने वालों को खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। ये थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के शब्द। वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमेपन की आशंका से कल दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। अमेरिका का मुख्य सूचकांक डाउ जोन्स 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। ब्रिटेन और जर्मनी के शेयर बाजारों में भी गिरावट का रुख रहा था। यूरोजोन में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 5 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंचने के कारण निवेशकों ने घबराहट में जमकर बिकवाली की। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार, भारत की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमेरिका में साल 2016 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे। इस चुनाव में रूस पर दखलंदाजी के आरोप लगे थे। इन आरोपों की जांच एफबीआई के पूर्व प्रमुख रॉबर्ट मुलर को सौंपी गई थी। मुलर ने अपनी जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल को सौंप दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता दिनेश उप्रेती।
करीब 22 महीने की लंबी जांच के बाद एफबीआई के पूर्व प्रमुख और स्पेशल वकील रॉबर्ट मुलर ने अपनी जांच रिपोर्ट अमरीकी न्याय विभाग को सौंप दी। मुलर इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या वाकई रूस ने साल 2016 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की मदद की और विरोधी हिलेरी क्लिंटन को हराने के अलग अलग हथकंडे अपनाए। इस रिपोर्ट का कितना हिस्सा अमरीकी संसद के साथ साझा किया जाना है, इसका फैसला अटॉर्नी जनरल विलियम वर लेंगे। अमरीकी संसद को लिखे पत्र में बर ने कहा है कि वह संसद को मुख्य बिंदुओं की जानकारी इस सप्ताह के अंत तक दे सकते हैं। मुलर की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया गया है। अमेरिका की पूर्व सहायक अटॉर्नी किम वेली ने बीबीसी को बताया कि अब गेंद अटॉर्नी जनरल बर्र के पाले में पहुंच गई है। उन्होंने कहा,
At this point, he will read the report and then make his own determination as to whether any of it.
अब अटॉर्नी जनरल बर इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और तय करेंगे कि इसे संसद और जनता के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि नहीं। उन्हें नियमों के तहत संसद को ये बताना तो जरूरी है कि जांच पूरी हो गई है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए वह बाध्य नहीं है। ये थे अमरीका की पूर्व सहायक अटॉर्नी किम वेली के शब्द। ट्रंप और उनके रिपब्लिकन सांसद इस जांच पर सवाल उठाते रहे हैं और इसे जानबूझकर ट्रंप को बदनाम करने का हथकंडा बताते रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर कहा था कि मुलर की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए, पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए और व्हाइट हाउस को दखल देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती। रुख भारत का। भारत में आम चुनाव की उल्टी गिनती जारी है। राजनीतिक दल लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। इसके बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर भी जारी है। कांग्रेस ने कल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। बीजेपी ने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज करने में देर नहीं की कि उसके नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने सीनियर नेताओं को 1800 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
चुनावी माहौल में आरोप लगाना साधारण सी बात हो गई है, लेकिन ये आरोप पहले भी सुनने को मिला था, लेकिन कल जिस तरह की रकम बोली गई है उससे आरोप गंभीर हो जाता है। कांग्रेस ने दी कारावान मैगजीन की एक रिपोर्ट के आधार पर ये इल्जाम लगाया कि कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को रिश्वत दी थी। मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि येडियुरप्पा ने एलके अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 50-50 करोड़ रुपए दिए थे और केंद्रीय मंत्रियों अरुण जेटली को 150 करोड़ रुपए, राजनाथ सिंह को 100 करोड़ रुपए, नितिन गडकरी को 150 करोड़ रुपयों के साथ उनके बेटे के शादी के लिए 10 करोड़ रुपए भी दिए थे। इसके अलावा उन्होंने कर्नाटका के निर्दलीय विधायकों को 2008 में अपनी सरकार बनाने के लिए भी रिश्वत बांटी थी। मैगजीन का ये भी दावा है कि येडियुरप्पा ने सारी रकम एक डायरी में लिखी थी जो एक छापे में मिली, लेकिन इस पर सरकार ने कोई जांच नहीं की है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा,
इस तथा कथित डायरी से तथ्य सामने आते हैं। 2690 करोड़ रुपया वसूला गया और 1800 करोड़ रुपया, 1000+800 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पहुँचाया गया।
येडियुरप्पा ने इन सारे इल्जामों को खारिज कर दिया और कहा कि ये निराधार और बेमतलब आरोप है। उनके अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी पहले ही दस्तावेजों के आधार पर और जांच के बाद इस निर्णय पर आई हैं कि हाथ से लिखी नोट जाली है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा,
इसका निष्कर्ष क्या है? कांग्रेस पार्टी हताश है, आने वाले अवश्यंभावी हार से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई। कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट इट्स बैलेंस। झूठे आरोप लगाना।
एक तरफ कांग्रेस रफेल का मुद्दा उठा रही है और दूसरी ओर बीजेपी राष्ट्रवाद को कार्यसूची बना रही है, तो क्या ये एक परसेप्शन बैटल यानी वोटरों के सामने खुद की बेहतर छवि पेश करने का संघर्ष है? हमने ये सवाल राजनीतिक विश्लेषक और जैन विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर संदीप शास्त्री से पूछा। उन्होंने कहा, इस चुनाव में हम दो तरह की धारणाएं देख रहे हैं। दोनों राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि स्थानीय पक्षों भी उपयोग कर रही हैं। उनको ये पता नहीं है कि कौन सी धारणा जनता पसंद करेगी। ये थे डॉक्टर संदीप शास्त्री के शब्द। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव का अभियान अभी भी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। अभी तक के संकेतों से लगता है कि आने वाले दिनों में आरोपों का यह दौर और भी फीका हो सकता है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और अब एक खास रिपोर्ट। निजी विमान कंपनी जेट एयरवेज मुश्किल दौर से गुजर रही है। कंपनी पर कर्ज का भारी बोझ है। सरकार ने स्टेट बैंक से कहा है कि वो इसे बचाने के लिए योजना बनाए। बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने इसे लेकर उठ रहे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
इसी सप्ताह ये खबर सामने आई कि 20 मार्च को स्पाइस जेट ने वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया था, जिसमें जेट एयरवेज के 260 पायलट पहुंचे थे। मामला कुछ ऐसा है कि निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और उसे बड़े निवेश की जरूरत है। जेट एयरवेज की हालत को लेकर सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सरकार ने कहा है कि वो आर्थिक संकट से जूझ रही इस कंपनी को बचाने के लिए कुछ योजना लेकर सामने आए। बीबीसी संवाददाता समीर हाशमी कहते हैं,
देखिए ऐसा कभी हुआ नहीं है आमतौर पे कि भारत सरकार ने जो सरकारी बैंक्स हैं उनसे कहा हो कि वो किसी प्राइवेट कंपनी को बचाएं। ये एक अनोखी परिस्थिति है।
ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है।
अगर जेट एयरवेज बंद हो जाती है तो 23,000 नौकरियां जो हैं वो खतरे में हैं, क्योंकि ये भारत की सबसे पुरानी एयरलाइंस में से एक है। इस वक्त ऑलरेडी मोदी सरकार पे इतना दबाव बना हुआ है जॉब्स को लेकर।
लेकिन सरकार के फैसले से जुड़ा एक अहम सवाल ये भी है कि क्या करदाताओं का पैसा किसी खस्ता हाल कंपनी में डालना सही होगा, खासकर तब जब किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने और महाराजा कहे जाने वाले एयर इंडिया के 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबने के मामले सामने खड़े हैं। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक जितेंद्र भार्गव कहते हैं कि सरकार के लिए ये गलत कदम होगा।
अगर मान भी लिया जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो अपने 8,000 करोड़ जो की लोन बैलेंस है उसको अभी साइड में रखता है और पैसा इन्वेस्ट करता है, तो सवाल ये उठेगा कि 6 महीने का क्या हो, तब आपको और फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। क्या भारतीय बैंक लगा?
बीबीसी संवाददाता समीर हाशमी बताते हैं कि बैंक के लिए ये बेहद गंभीर प्रश्न है और इस कारण वो खुलकर निवेश के लिए सामने नहीं आ रहे हैं।
SBI के जो अध्यक्ष हैं, जो इस रेस्क्यू मिशन को आगे लेके जा रहे हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर यानी निवेशक मिल जाए जो आके जेट एयरवेज में पैसा डाले। बैंक भी ये नहीं चाहते हैं कि वो उसमें निवेश करें।
जेट एयरवेज के मुद्दे को लेकर SBI ने एतिहाद एयरवेज से बात की है, जिसके पास जेट एयरवेज का 24% शेयर है। बैंक चाहती है कि अबू धाबी स्थित ये कंपनी जेट एयरवेज में और पैसा लगाए, लेकिन कंपनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो अब अपने बाकी शेयर बेचकर जेट एयरवेज से बाहर निकलना चाहती है। 1990 के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में जेट एयरवेज ने 4 बोइंग 737 विमानों के साथ उड़ान सेवा शुरू की थी और 2012 के आते आते देश की सबसे बड़ी निजी विमानन कंपनी बन गई थी। लेकिन आने वाले वक्त में बात बिगड़ी और साल 2018 के आखिर तक ये कंपनी भयंकर आर्थिक संकट की चपेट में आ गई। फिलहाल कंपनी $110 करोड़ के घाटे में चल रही है। उसके पास एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों को देने के लिए पैसे नहीं है। इसके पीछे के कारणों के बारे में जितेंद्र भार्गव बताते हैं कि नुकसान में भी सस्ती हवाई यात्रा देने की प्रतियोगिता इसके पीछे एक अहम कारण है।
इंडियन कैरियर्स ने बहुत सारे हवाई जहाज के ऑर्डर दिए गए हैं, उनको भरने के लिए कैरियर चाहते हैं कि मार्केट सिमुलेटेड रहे, ग्रोथ रेट, और वो तभी मुमकिन है जबकि कम दाम पे फेयर दिए जाते। सीधा परिणाम पड़ रहा है जेट एयरवेज पे, एयर इंडिया के ऊपर में। ये जो फैक्टर्स हैं प्लस ETF के दाम, रुपी का डिप्रिसिएशन होना पिछले कुछ समय के अंदर में, इन सब के कारण ये स्थिति हुई है।
2016 में दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें कम होने लगी थी और इसका फायदा कंपनी को मिला था, लेकिन ये अल्पकालिक था और कंपनी एक बार फिर नुकसान के कगार पर पहुंच गई। जितेंद्र भार्गव कहते हैं,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यही डिसीजन लेगा कि इनको बोर्ड से निकाला जाए, एक दूसरी मैनेजमेंट टीम को रखा जाए, और जैसा कि सत्यम कंपनी के साथ हुआ था कि एक बार जब जेट एयर
आगे देखना ये होगा कि सरकार के फैसले के बाद जेट एयरवेज को इस स्थिति से उबारने के लिए बैंक क्या कदम उठाती है। मानसी दास, बीबीसी दिल्ली।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि पाकिस्तान के नेशनल डे के मौके पर उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई संदेश मिला। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। इस खबर को आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आएं bbchindi.com पर। और आज के अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी है ये बताने के लिए मौजूद हैं दिनेश उप्रेती। जी दिनेश।
जी वस्त्र, जैसा कि आपने बताया, भारत सरकार के पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार करने की खबर लगभग सभी अखबारों की सुर्खी है। इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खी है, सरकार ने पाक नेशनल डे का बहिष्कार किया, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के लोगों को शुभकामना संदेश भेजा।
जी
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने और प्रधानमंत्री मोदी के जवाबी हमले की खबर भी कई अखबारों में छाई हुई है। अलगाववादी नेता यासिन मलिक के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF पर प्रतिबंध की खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र के इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि ये प्रतिबंध एक हानिकारक कदम है जो कश्मीर को एक खुली जेल में बदल देगा।
जी ये बयान कई अखबारों में मैं देख पा रहा हूँ।
जी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसके तहत साल भर में 6,000 रुपये देने हैं और दो हज़ार रुपये की किस्तें हैं ये, के तहत दूसरी किस्त के भुगतान को मंजूरी दे दी है। आयोग ने कहा है कि इस स्कीम का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल पाएगा जो 10 मार्च को आचार संहिता लागू होने से पहले इसके लिए पात्र पाए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने कांग्रेस के बीजेपी नेताओं पर येदियुरप्पा से रिश्वत लेने के आरोपों को पहले पन्ने पर छापा है। बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया है।
जी
हिंदुस्तान टाइम्स ने बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीट समझौते की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की हाथ मिलाते हुए तस्वीर भी छापी है। समझौते के तहत RJD 20 सीटों पर और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
जी शरद यादव RJD के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, कई अखबारों ने इसको भी हेडलाइन बनाया है। बहुत शुक्रिया दिनेश उप्रेती अखबारों की समीक्षा के लिए।
बीबीसी इंडिया बोल।
लोकसभा चुनावों का असली मुद्दा क्या हो, राष्ट्रवाद या बेरोजगारी और कृषि संकट, यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। आप भी रखें अपनी बात तर्कों के साथ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 23 मार्च शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त है विवेचना का। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, नाम है केसरी। इसमें साल 1897 की सारागढ़ी की लड़ाई की कहानी दिखाई गई है। इस लड़ाई में 22 सिख जवानों ने 7 घंटे तक 10,000 पठानों का मुकाबला किया था। क्या हुआ था इस लड़ाई में, बता रहे हैं रेहान फजल।
जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे, कब हुना शो
12 सितंबर 1897 उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में कोहाट जिले में 6,000 फीट की ऊंचाई पर सारागढ़ी किला। किले पर 36 सिख रेजिमेंट के 21 जवान तैनात थे। सुबह के 8 बजे थे। बाहर तैनात संतरी ने दौड़कर अंदर खबर दी कि हजारों पठानों का एक लश्कर झंडों और नेजों के साथ उत्तर की तरफ से सारागढ़ी किले की तरफ बढ़ रहा है। उनकी तादाद 8,000 से 14,000 के बीच थी। सारागढ़ी लड़ाई पर बहुचर्चित किताब द आइकॉनिक बैटल ऑफ सारागढ़ी लिखने वाले ब्रिगेडियर कमलजीत सिंह बताते हैं,
8 बजे जब खबरें मिलनी शुरू होगी, बल्कि उससे पहले ही कि कुछ लोग इकट्ठे हो रही है, मट्टी उड़ी क्यों उड़ी, घोड़े आगे बढ़े, फिर पता चला कि वहाँ तो बहुत फौज है जो कि हमला करने वाली है, तो इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और इन्होंने अपनी जो जगह थी उनकी तैनात जगह थी उन जगह में पहुंच गए। लेकिन 9 बजे जब हमला शुरू हुआ तो हवलदार ईश्वर सिंह ने सबको कहा था कि कोई फायर नहीं खोलेगा जब तक मैं ना बोलूं, और मैं तब बोलूंगा जब वो मेरे बिल्कुल राइफल के एक्यूरेट फायरिंग के रेंज में आ जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारा जाए, हम उसका रिस्क लेंगे, उनको नज़दीक आने देंगे। तो फायर डिसिप्लिन को कायम करते हुए जब वो लोग सिर्फ 200 गज पहुंच गए, इसने ऑर्डर दिया फायर, और कितनों को ही मारा, कितने ही जख्मी हुए। और वो पठानों का इतना जो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए अपनी राइफल्स अपने जजेल्स फायर करते हुए नेजों के साथ झंडों के साथ और टम टम बजाते हुए जो आगे बढ़ रहे थे, जो किसी के भी दिल को दहला देता, वो वहीं पे मात खा गए।
हवलदार ईशर सिंह ने पास के फोर्ट लॉकहार्ट पर तैनात अंग्रेज अफसर कर्नल हॉटन को हालात से अवगत कराया। कर्नल हॉटन का हुक्म आया, होल्ड योर पोजीशन। एक घंटे के अंदर किले को तीन तरफ से घेर लिया गया और अगजइयों के नेता गुलशाह ने सफेद झंडे के साथ अपना एक सैनिक सारागढ़ी किले पर भेजा।
इस दौरान जो गुल बादशाह उनका लीडर था, वो हवलदार ईशर सिंह के सम्मुख हुआ। उसने कहा कि तुम तादाद में बहुत थोड़े मारे जाओगे और तुम अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हो, अंग्रेजों की लड़ाई लड़ रहे हो, क्यों लड़ाई लड़ रहे हो उनकी? तो उसके जवाब में हवलदार ईशर सिंह ने कहा, ये तो जमीन महाराजा रणजीत सिंह की, हमारी जमीन है, हम यहाँ लड़ेंगे और मिट जाएंगे। आप अगर हिम्मत है आगे बढ़ो और हमारी गोलियों का मजा लो, और ये हमें बहलाने के तरीके बंद करो कि आप हमें महफूज तरीके से कुहाड़ भेज देंगे या कुछ कर देंगे और लड़ें। असल में तो सुना गया कि उसने गाली गलौज भी किया। आफ्टर ऑल जोश में ये बातें तो होती हैं।
सवाल उठता है कि इतनी तादाद में औरंगजेबियों ने सारागढ़ी किले पर हमला क्यों किया? ये वो इलाका है जहां रहने वाले लोगों पर आज तक किसी का नियंत्रण नहीं हो पाया है। 1880 के दशक में अंग्रेजों ने यहां तीन चौकियां बनाई, जिसका कि स्थानीय औरंगजेब कबायलियों ने जबरदस्त विरोध किया। जाने माने सैन्य इतिहासकार और सैनिक थिंक टैंक यूएसआई के सचिव राणा छीना बताते हैं,
97 में एक फ्रंटियर अपराइजिंग हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। उस टाइम ये जो एरिया था जिसको ब्रिटिश इंडिया में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते थे और आजकल पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वो एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी में आता था, लेकिन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। इट वॉज एक किस्म का बॉर्डर एरिया था जहाँ सिर्फ जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उन्हीं का ही कानून चलता था और किसी का नहीं। तो ये कोशिश थी अंग्रेजों की उस एरिया को कंसोलिडेट करें। उस जमाने में ब्रिटिश इंडिया में एक बहुत ज्यादा जो खौफ था उनको वो रशिया की तरफ से था। सो डिफेंस ऑफ द इंडियन फ्रंटियर्स वो रूस इंपीरियल रशिया की तरफ देख के ज्यादा उनका होता था। अफगानिस्तान को एक वो बफर स्टेट की तरह मानते थे। 1897 में जो फ्रंटियर ट्राइब्स थी, इन्होंने जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, रोड्स बिल्ड करने की कोशिश की उस ट्राइबल एरिया में, तो उन्होंने एक अंग्रेजों के खिलाफ अपराइजिंग घोषित कर दी, एक जिहाद डिक्लेयर कर दिया। तो फिर इंडियन आर्मी को वहां पे भेजा गया था उसको कंटेन करने के लिए।
दोबारा लौटते हैं लड़ाई की तरफ। पहले एक घंटे में ही पठानों के 60 सैनिक मारे जा चुके थे और सिखों की तरफ से सिपाही भगवान सिंह की भी मौत हो चुकी थी।
इस दौरान अपने भी तकरीबन 5-6 आदमी या जख्मी हो गए थे या शहीद हो गए थे। अब उन्होंने एक और चाल चली क्योंकि वो हमला भी नाकामयाब रहा। चारों तरफ सूखी झाड़ियां थी, उन्होंने मशाले फेंकी, आग लगा दी। आग का फायदा उठाते हुए उन्होंने मंजिए कॉट्स ली, उनके ऊपर मट्टी डाली, पत्थर डाले और दो आदमी एक कॉट के नीचे छुपते छुपाते, जो एक कॉर्नर था जो कि अंदर के लोगों को गली के लोगों को दिखाई नहीं देता था, वहां छेद बनाना शुरू कर दिया। मेजर देशमुख ने गुलिस्तान की तरफ से उनको काफी मैसेज भेजे कि आपके साइड में एक छेद बन रहा, लेकिन लड़ाई के दौरान या बात की समझ नहीं आई या मैसेज ठीक तरह से वो ले नहीं पाए, ये बात वहां तक नहीं पहुंची, नहीं तो शायद वो छेद ना करने दिया जाता।
इस बीच लांस नायक चांद सिंह के साथ मुख्य ब्लॉक में तैनात तीन जवान साहिब सिंह, जीवन सिंह और दया सिंह भी मारे गए। जब चांद सिंह अकेले रह गए तो ईशर सिंह और उनके बचे हुए साथी अपनी रक्षण पोजीशन को छोड़कर उनके पास मुख्य ब्लॉक में आ गए। ईशर ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो अपनी राइफलों में संगीन लगा लें।
इतने में इतनी गोलियां चल रही थी अफगानों की, वो भी बड़े एक्यूरेट और बड़े दबंग और बड़े बहादुर आदमी थे, कि उन्होंने जो गाड़ी का दरवाजा था एक लकड़ी का था, उसमें बहुत गोलियां लगने से उसकी भी छिलतने बन के और दरवाजा उड़ना शुरू हो गया। तो आखिरी हमला जो उन्होंने तकरीबन 3:30 बजे किया, तब तक वो जो छेद बन रहा था वो गिर गया, और बाद में जो देखा गया है 12 फीट बाई 7 फीट का वो पार बन गया था और इधर से दरवाज़ा टूट गया था और वो अंदर आ गए। तब तक सब आदमी लड़ते हुए कईयों को मारते हुए शहीद हो गए।
करीब 2 मील की दूरी से पास के लॉकहार्ट किले से ये लड़ाई देख रहे कर्नल हॉटन ने सारागढ़ी में फंसे अपने साथियों की मदद करने की कोशिश की। कैप्टन अमरेंद्र सिंह अपनी किताब सारागढ़ी एंड द डिफेंस ऑफ द सामना फोर्ट में लिखते हैं,
उस इलाके में हजारों पठानों के बढ़ने के बावजूद लेफ्टिनेंट मन और कर्नल हॉटन ने एक बार फिर 78 साथियों के साथ सारागढ़ी में गिर चुके अपने साथियों की मदद के लिए फायरिंग करना शुरू कर दी ताकि पठानों का ध्यान भंग हो। जब वो किले से सिर्फ 500 मीटर दूर थे, उन्होंने देखा कि पठान किले की दीवार फल्लांग चुके हैं और किले के मुख्य द्वार पर आग लगी हुई है। हॉटन को अंदाजा हो गया कि सारागढ़ी गिर चुका है।
आखिर में नायक लाल सिंह, एनसी दाद और सिग्नलमैन गुरमुख सिंह जिंदा बचे। गुरमुख ने कर्नल हॉटन को संदेश भेजा।
आखिर में जो गुरमुख सिंह था उसने लास्ट मैसेज कर्नल हॉटन को ये भेजा, अब आग भी लग गई है अंदर और मैं अकेला हूँ और मैसेज नहीं भेज सकूंगा, मैं अभी राइफल पकड़ रहा हूँ। उसने राइफल पकड़ी, बैनेट से तलवार से कहा जाता है 20 आदमी मारे। तकरीबन 4 बजे तक 7 घंटे लगातार 21 आदमियों ने 12,000-10,000 आदमियों का मुकाबला किया।
इस लड़ाई को दुनिया के सबसे बड़े लास्ट स्टैंड में जगह दी गई। 36 सिख के मारे गए सभी सैनिकों को उस समय का सबसे बड़ा वीरता सम्मान इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट क्लास 2 दिया गया।
कर्नल हॉटन ने पहले तो इन बहादुरों को सैल्यूट किया, फिर ये खबर पंजाब के गवर्नर को भेजी, पंजाब के गवर्नर ने ये खबर इंग्लैंड में भेजी। उस वक्त जो पार्लियामेंट उस सेशन में थी इंग्लैंड में, जब उनको ये खबर मिली कि ऐसी बहादुरी दिखाई गई है एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन फोर्स की, तो सारे मेंबर्स पार्लियामेंट खड़े हो गए और दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम हुई कि उन्होंने इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दी। और यह बात जब क्वीन विक्टोरिया को पता लगी तो उसने कहा सबसे हाईएस्ट अवार्ड इनको दिया जाए। उस वक्त विक्टोरिया क्रॉस हिंदुस्तानियों को नहीं दिया जाता था, सबसे बड़ा अवार्ड था इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो उस वक्त के विक्टोरिया क्रॉस आज के हमारे PVC के बराबर है, वो दिया गया। और इसके अलावा और बहुत से इनाम दिए गए इनको इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के अलावा। उनके डिसेंडेंट्स को हर एक को 500 रुपया, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, सबको दी गई। उनके डिसेंडेंट्स को 2-2 मुरब्बे जमीन जो कि 50 एकड़ के बराबर होती है वो दी गई। ये स्टोरी UNO की 8 सबसे दुनिया की बहादुर स्टोरीज में ली गई।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
विवेचना पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और बता दें कि आज से IPL के 12वें सीजन की शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला रात 8 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होगा। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। और अब चलते चलते मुख्य समाचार दिनेश उप्रेती से।
BBC समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के चुनावी अभियान में रूस की कथित दखलंदाजी की जांच कर रहे विशेष वकील रॉबर्ट मुलर ने अपनी रिपोर्ट अमेरिकी न्याय विभाग को सौंप दी है। भारत सरकार ने अलगाववादी नेता यासिन मलिक के नेतृत्व वाले संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए 36 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने भी 7वीं सूची में 35 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। राज बब्बर अब मुरादाबाद की बजाय फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ेंगे। अमेरिका ने कहा है कि उसकी अगुवाई वाली सेना ने सीरिया में कथित इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से उनका आखिरी इलाका भी छीन लिया है। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजीत सारथी। आपसे अगली मुलाकात शाम के वक्त 7:30 बजे इंडिया बोल में होगी। तब तक खबरों की जानकारी के लिए आपके साथ है BBC हिंदी.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।